ஓம் சாந்தி. ஜஹா வியக்தி ஜனம் லேதா ஹை வஹா ஹி உஸ்கே சம்பந்த ஜுட் ஜாதே ஹை. தோ ஹம் சபி நே யே அலௌகிக ஜனம் லியா ஹை, திவ்ய ஜனம் லியா ஹை. தோ டைரக்ட் பாக்ய விதாதா பகவான் கே ஹம் பச்சே ஹை. उस ऊंच ते ऊंच पिता से हम सबका संबंध है, और एक संबंध नहीं सर्व संबंध है. जैसे कहा कि भक्ति में हम गाते रहे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. तो गाया जरूर, लेकिन वो सर्व संबंध कैसे अनुभव करें, वो हम संबंध नहीं जोड़ पाए. लेकिन वर्तमान समय संगम युग पर स्वयं भगवान अवतरित होकर के हमें वो सर्व संबंधों का अनुभव करा रहे हैं. जहां संबंध होते हैं वहां स्नेह होता है, सहयोग होता है, प्राप्तियां होती हैं, सहारा मिलता है, साथी होते हैं. तो हम सब ने भी ईश्वरीय स्नेह का अनुभव किया, और हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार वो ईश्वरीय स्नेह, रूहानी स्नेह है. जैसे ही हम आए इस ब्राह्मण जीवन में, उस ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह का हमने अनुभव किया, और उसी ने ही हमसे सहज त्याग कराया. हमें मेहनत महसूस नहीं हुई, स्नेह मेहनत को समाप्त कर देता है. बाबा से हमें हर परिस्थिति में सहयोग मिलता है. हम सब ब्राह्मण अनुभवी हैं कि समय प्रति समय जब हमें आवश्यकता होती है, बाबा को जिस संबंध से हम चाहते हैं वो मदद हमें मिलती है. हमारे जीवन के ऐसे अनेक अनुभव हैं, आप सबके भी होंगे. मैं 2009 में पहली बार अमेरिका गई थी, और कई शहरों में जाना हुआ. तो जब मैं न्यूयॉर्क में गई तो वहां मॉर्निंग क्लास के बाद दिन में साइट सीन का प्रोग्राम बनाया हुआ था. तो साइट सीन करने के बाद शाम का समय था, और शाम के समय पर वहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो स्थान देख करके हम वापस आ रहे थे. मेरे साथ सेंटर की बहन थी जो मुझे लेके गई थी घुमाने के लिए. तो वहां नजदीक में ही वो ट्विन टावर जिनको आतंकवादियों ने गिरा दिया था वो स्थान था. तो उस दिन वही दिन था जिस दिन ट्विन टावर गिराया गया था. तो जिनके लोग मरे थे वो लोग सब वहां श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे. तो हम गए उस स्थान पर, वो बहन लेकर गई मुझे, और क्योंकि मेरे पास कैमरा था तो मैंने वो फोटो लिया उसका. और जैसे ही मैंने फोटो लेकर पूरा किया, बहन को देखा मैंने, तो वो बहन मुझे दिखे नहीं. तो मुझे लगा इतनी भीड़ है, इधर उधर कहीं हो गए होंगे. तो मैंने उनको देखना शुरू किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली. आधा घंटा हो गया मैंने उनको ढूंढ लिया, वो बहन नहीं मिली. तो मेरे को थोड़ा संकल्प चला, क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी, पहली बार का मेरी वो यात्रा थी, और क्योंकि वो मेरे साथ थी तो सेंटर का एड्रेस और नंबर भी नहीं था मेरे पास. और शाम को 7 बजे पब्लिक प्रोग्राम था सेंटर पर. मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा कहाँ जाऊं मैं, वो बहन तो मिल नहीं रही, आप देखो कैसे मुझे पहुंचाना है, 7 बजे प्रोग्राम है. फिर देखो बाबा कैसे हमें टच करता है. और उसी समय मैंने अपना पर्स खोला तो देखा कि जिस बस में हम आए थे उस बस की टिकट मेरे पास थी. तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि बस की टिकट है मेरे पास, तो बस में बैठ जाऊंगी। तो मैनहट्टन मुझे याद था कि मैनहट्टन में सेंटर है, तो मैंने कहा मैनहट्टन में उतर जाऊंगी, फिर कहीं से पूछ पूछ के पहुंच जाऊंगी। तो मैंने एक पुलिस वाला था वहां, उससे पूछा कि ये बस कहाँ आएगी, उसने मुझे स्टॉप बता दिया, मैं पहुंच गई वहां। बस में बैठी तो बस वाले ने पूछा मेरे से, जो कंडक्टर होता है, इंग्लिश में पूछा उसने, कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा कि मैनहट्टन जाना है। तो मुस्कुराने लगा, उसने कहा कि सिस्टर ये पूरी जगह ही मैनहट्टन है, आप बताओ आपको कहाँ जाना है। तो मैं उलझन में आ गई, मैंने कहा ये पूरा ही मैनहट्टन है, कहाँ जाना है। फिर मैं चुप हो गई और सोचने लगी। फिर मुझे टच हुआ कि मेरा भाई विदेश में था, तो उन्होंने मुझे फोन दिया था कि आपको कोई भी जरूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में। वो फोन था मेरे पास और सिर्फ उसी का ही नंबर था, और किसी का भी नंबर नहीं था उसमें। उस जमाने में स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे, तो मैंने फोन लगाया उसको और उसको मैंने बताया कि मैं न्यूयॉर्क में गुम हो गई हूँ और आप इंटरनेट पे जाकर के ढूंढो अमेरिका के मैनहट्टन सेंटर का या हार्मनी हाउस है उसका एड्रेस ढूंढो, नंबर ढूंढो, और वो बहनों को मेरा फोन करके मेरा नंबर दो, ताकि वो मुझे कॉल कर सकें और मुझे गाइड कर सकें कि मुझे कैसे पहुंचना है। तो फिर उसने ये सारा काम किया, और जब तक वो बस घूमती रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ उतरना है, तो फिर वो सब करके उसने मैनहट्टन की बहन हार्मनी हाउस में उसने बताया, हार्मनी हाउस वालों ने मैनहट्टन में फोन किया, और मैनहट्टन की बहन ने फिर मुझे फोन किया, और फिर उसने मुझे पूछा कि अभी आपकी बस कहाँ है। फिर मैंने थोड़ा बाहर देख करके जो लैंडमार्क्स थे, जो शॉप्स दिख रही थी, उसमें से बताया। फिर उसने मुझे बता दिया कि आपको यहाँ उतर जाना है, हम किसी को भेज देंगे। तो मैंने बाबा को बोला था कि प्रोग्राम से पहले आप मुझे पहुंचा दो, और मैं 7 बजे प्रोग्राम था, 6:45 बजे मैं सेंटर पहुंच चुकी थी, और 7 बजे जाकर के मैंने प्रोग्राम किया। तो ये मैंने देखा कि ऐसी स्थिति में भी अगर हम बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो जरूर बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं। भगवान तो निराकार है, वो खुद तो नहीं आते, लेकिन कोई आत्मा निमित्त बन जाती है। ऐसे कई अनुभव हैं जिससे मैंने महसूस किया कि असंभव भी संभव हो जाता है। तो बाबा हमारा माता पिता है, शिक्षक हैं, गुरु हैं, दोस्त हैं, साजन हैं, बच्चा भी है, और भी जो संबंध हम अनुभव करना चाहें, भाई है, बहन है, वो बाबा हर संबंध हमसे निभाता है। माता पिता के रूप में हमारे पालनहार हैं, और जैसे बच्चे माँ बाप को अपनी जिम्मेवारी देकर बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, माँ बाप के साथ होते हैं तो बच्चे निश्चिंत होते हैं, तो ऐसे वो हमारा माता पिता है, और जो भी हमारी जिम्मेवारी है, जो भी हमारे बोझ हैं, वो बाबा के हैं, उसको देकर के हम निश्चिंत रहें। बाबा ने हमें वर्षे का अधिकारी बनाया है, सभी प्राप्तियों के हम अधिकारी हैं। जैसे माता पिता की जो भी प्राप्तियां होते हैं, बच्चे उसके भी अधिकारी होते हैं। तो बाबा ने जो भी हमें खजाने दिए हैं, उन खजानों को हम स्मृति में लाते रहें, और विशेष अमृत वेले हम माता पिता की पालना अनुभव कर सकते हैं बाबा से। फिर बाबा हमारा शिक्षक है, वो ऊंचते ऊंच शिक्षक हैं, और ऊंचे से ऊंची पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमें मनुष्य से देवता बनाने वाली है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, और जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं उस पढ़ाई में, वो अपनी पढ़ाई में बहुत रेगुलर पंचुअल होते हैं, ताकि पढ़ाई में कुछ मिस ना हो जाए। तो हमें भी बाबा इस पढ़ाई में यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल रेगुलर और पंचुअल रहना है। और पढ़ाई सिर्फ केवल सुनने की नहीं है हमारी, सुनने तक नहीं, लेकिन उसको समाना है और उसे रिवाइज भी करना है। जैसे वो स्टूडेंट भी पढ़ाई को रिवाइज करते हैं तब उसमें परफेक्शन आती है, तब वो एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। तो हमारे भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, एक है थ्योरी दूसरा है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो बाबा हमें पढ़ा देता है क्लास में, लेकिन जब हम जीवन व्यवहार में कर्म व्यवहार में जाते हैं तो फिर हमारा प्रैक्टिकल भी होता है। तो जो भी शिक्षाएं बाबा की हैं वो कितने हमारे स्वरूप में हैं। एक युधिष्ठिर का मिसाल मुझे याद आता है कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों पांडवों दोनों को पढ़ा रहे थे, तो एक पाठ दिया, छोटे छोटे बच्चे थे वो, तो पाठ दिया, होमवर्क देते हैं जैसे कि याद करके आना, क्रोध मत करो। तो दूसरे दिन पूछा सभी से तो सभी ने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन याद करके आ जाना। फिर अगले दिन पूछा युधिष्ठिर पाठ याद हुआ, तो कहा गुरुजी नहीं याद हुआ। तो उन्होंने थोड़ा सा जोर से बोला कि इतना सरल पाठ याद नहीं हुआ, कल जरूर याद करके आना, नहीं तो तुमको कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर अगले दिन भी गुरु ने पूछा तो युधिष्ठिर ने वही जवाब दिया कि गुरुजी याद नहीं हुआ, गुरु ने उसको कक्षा से बाहर कर दिया। फिर अगले दिन फिर पूछा और कहा नहीं याद हुआ, तो एक छांटा लगा दिया, गुस्सा आ गया गुरुजी को। तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी अब याद हो गया। तो उन्होंने कहा कि थप्पड़ खा करके पाठ याद होता है, तो कहा नहीं, मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा था कि मुझे गुस्सा नहीं आए, पहले दिन दुर्योधन ने मुझे कुछ कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरे को पाठ याद नहीं था। अगले दिन भी कोई ऐसी बात हो गई जो मुझे गुस्सा आ गया, पर आज आपने जब मुझे थप्पड़ लगाया तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, या माया जीत बनो। सुनने में तो कितने सरल शब्द हैं, लेकिन पूरा उसको आचरण में उतारने में हमें काफी समय लगता है। तो हमारी जो शिक्षा है, जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई सिर्फ सुनने की नहीं है, लेकिन हम सर्वगुण संपन्न बने, 16 कला संपूर्ण बने, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा आपका श्रृंगार कर रहे हैं विष्णुपुरी में ले जाने के लिए। तो इन ज्ञान रत्नों से आपको विश्व की बादशाही मिलने वाली है। फिर बाबा हमारा गुरु भी हैं, गुरु मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं और बाबा तो हमें सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास और समर्पण होना चाहिए, और ये ब्रह्मा बाबा के जीवन में था। ब्रह्मा बाबा के लिए हम सुनते हैं 12 गुरु किए बाबा ने, और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, माना अंधश्रद्धा कहेंगे कि आधी रात को भी अगर गुरु ने बुलाया है तो बाबा बिना कुछ सोचे चले जाएंगे। तो ऐसे एक मिसाल भी आता है कि उनके जो पोता था उसकी छठी थी और काफी मेहमान घर में आने वाले थे, और गुरु का तार आया उनके पास कि तुरंत आ जाओ, और कुछ धन भी गुरु ने मंगाया था। तो बाबा ने जाने की तैयारी की, तो पत्नी ने कहा, जसोदा माता ने कहा कि इतने मेहमान आने वाले हैं बाबा घर में, आज नहीं कल चले जाना। तो बाबा ने कहा कि नहीं, गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है। और बाबा गए, और हालांकि कोई विशेष काम नहीं था, किसी उनके शिष्य को लॉस हुआ था और उसको धन चाहिए था, और उसके लिए गुरु ने उनको बुलाया था। गुरु के लिए कहते हैं कि गुरु आशीर्वाद देते हैं, जो भी लोग जाते हैं गुरु के पास वो इसलिए जाते हैं कि गुरु आशीर्वाद दे, उनके सिर पर हाथ रख दे, उनकी मुश्किलें आसान हो जाएं, उनके लिए सब कुछ सहज हो जाए, और आशीर्वाद मांगते हैं जो कमी है जीवन में। वो कहते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव जो भी उसकी मनोकामनाएं होती हैं उस अनुसार उनको आशीर्वाद मिलता है। और बाबा ने हमें ये सब आशीर्वाद दिए हैं, हम सबको आयुष्मान बनाया है। इस ब्राह्मण जीवन में हम अंत तक जिए, ये संगम युग की आयुष है कि हम बीच में ज्ञान छोड़कर ना चले जाएं। ये आयुष्मान भव का वरदान बाबा हमें देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। धनवान भव तो ज्ञान धन से, जो अविनाशी धन है उससे हम धनवान हैं, और वो धन स्वतः ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो स्वतः ही स्थूल धन को भी लाता है। और बाबा ने हमें पुत्रवान भव का भी वरदान दिया है, तो पुत्रवान भव माना हम मास्टर रचयिता हैं। वो तो एक दो तीन बच्चों के माता पिता होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम बाबा का ये ज्ञान जिन आत्माओं को देते हैं, जो बाबा के बच्चे बनते हैं, उनके लिए बेहद के मास्टर रचयिता हो जाते हैं। फिर जो श्रीमत का हाथ है वो बाबा का सदा ही हमारे सिर पर है, अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो स्वतः ही बाबा की आशीर्वाद और दुआएं हमें मिलती रहती हैं। बाबा कहते भी हैं मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं देता हूं, लेकिन श्रीमत पर चलना ही आशीर्वाद लेना है, बाबा की दुआएं लेना है। फिर वरदान मिलते हैं हमें, गुरु वरदान देते हैं, तो जो भी वरदान बाबा हमें देते हैं अगर उन्हें समय पर हम स्मृति में लाते हैं, जैसा समय वैसा वरदान यदि हमने याद किया, तो स्वतः ही वो वरदान हमारे जीवन में कार्य करता है। मंत्र देते हैं गुरु, तो वहां मंत्र देते हैं तो कहते हैं ये मंत्र और किसी को नहीं देना, ये आपके लिए ही मंत्र है, और जितना हो सके इस मंत्र का जाप करते रहना। बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव मध्याची भव। तो मन मना भव के मंत्र के लिए बाबा कहता है कि जितना हो सके सबको दो, और अजपा जाप जैसे भक्ति में भी कहते हैं, जितना हो सके जितना निरंतर मुझे याद कर सकते हो मुझे याद करो। तो बाबा से हमें मंत्र भी मिले हुए हैं, तो इस रूप में वो हमारे सद्गुरु हैं और हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराते हैं। बाबा हमारा दोस्त है। जो दिल की बात हम बाबा से कहना चाहते हैं, जो हम किसी से नहीं कह सकते, कई बातें हमारी इतनी पर्सनल होती हैं कि हम किसी को भी नहीं कह सकते, और कोई भी इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है कि हम अपनी बात उनको कहेंगे तो वो दूसरे तक ना कहे, एक ना एक को तो कोई कह ही देता है। तो बाबा से हम अपनी वो दिल की बात कह सकते हैं। कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, जो समय पर आवश्यकता के समय काम आए वही दोस्त होता है। और बाबा सदा ही हम कहां भी किसी भी समय उसे याद करें वो हमारे लिए हाजिर है। बाबा कहते हैं ना मेरा बाबा कहो, दिल से मेरा बाबा कहा, और बाबा कहते हैं हुजूर हाजिर हैं। वो दोस्त शायद न भी हो, क्योंकि शारीरिक रूप से कोई जरूरी नहीं है कि जब सचमुच हमें आवश्यकता है कोई हमारे लिए हाजिर हो जाए। आज की भी वर्तमान परिस्थितियों में भी हम देख लें, आज कौन किसके लिए हाजिर हो सकता है, लेकिन बाबा को हम जब भी याद करें वो हमारे लिए हाजिर हैं। ऐसे ही बाबा हमारे साजन भी हैं, आत्मा रूप में हम सब सजनिया हैं, एक परम पुरुष एक ही परमात्मा है, और इस संबंध में बाबा को वफादारी पसंद है। जैसे दुनिया में भी पति पत्नी के संबंध में या साजन सजनी के संबंध में इसी को ही वो महत्वपूर्ण समझते हैं कि उस एक के अलावा किसी और के प्रति उनका संकल्प नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं एक शिव बाबा मेरा दूसरा ना कोई, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से प्रीत निभाऊं, ये बाबा हमें चाहते हैं इस संबंध में, और वही हमारा पुरुषार्थ है। कहीं और जरा भी लगाव झुकाव प्रभाव में हम आते हैं तो बाबा फिर हमसे दूर हो जाते हैं। बाबा हमारा बच्चा भी हो सकता है, बच्चा भी है, कई माताएं बाबा को बच्चे रूप में याद करती हैं। बाबा कहता है मुझे अपना पहला वारिस बनाओ तो मैं 21 जन्मों के लिए तुमको वारिस बना दूंगा। तो इसमें जैसे और बच्चों के लिए माँ बाप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ऐसे ही शिव बाबा के प्रति भी बच्चे के रूप में अपने सारे कर्तव्य करें, जो उन बच्चों के प्रति करते हैं वैसा ही शिव बाबा के प्रति भी करें। और बाबा जैसा बच्चा हो, जैसे माँ बाप को जब लायक बच्चा होता है, योग्य बच्चा होता है, तो कितना नशा होता है, उनको गर्व होता है अपने बच्चों के ऊपर कि ये ऐसे हैं हमारे बच्चे, हमारा नाम रोशन करने वाले हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा तो आपका एक कुल नहीं, 21 कुल का कल्याण करने वाला है, इतना लायक बच्चा है, तो कितना खुशी होनी चाहिए, कितना उसका नशा होना चाहिए। तो कई बार कई भाई बहने कहते हैं कि इतने सब संबंधों का बाबा से अनुभव नहीं होता है, कोई एक संबंध बहुत प्रिय है, उस संबंध से ही हम बाबा को याद करते हैं। पर जैसे कहा कि अगर एक संबंध निभाने में भी कमी रही तो कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से हमको खींच लेगी। कई बार कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है ना, आकार है, और कभी दिल में ऐसी उलझन वाली बातें होती हैं तो बाबा से योग भी नहीं लगता है, वो अनुभव भी नहीं होता है, तब तो कोई चाहिए ना साथी, कोई साकार में चाहिए जिससे हम दिल की बात कहें। तो यदि हम किसी को साकार में साथी बनाते हैं तो बाबा कहता है कि ये आपका दिल का स्नेह नहीं है, बाबा से दिल का स्नेह नहीं है, बाबा को सिर्फ नॉलेज के आधार पर जाना है कि हमारे सर्व संबंध है। अगर दिल का स्नेह है तो भले बाबा निराकार आकार है लेकिन फिर भी वो साकार रूप में आपको वो अनुभव कराएगा। जब भक्तों को उन्होंने अनुभव कराया, भक्तों के ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव है, जब हम भक्तों की, खासकर जो अनन्य भक्त हुए, उनकी कहानियां सुनते हैं, जैसे मीराबाई के बारे में हम सुनते हैं, सूरदास के बारे में सुनते हैं, ऐसे ही अन्य अनेक भी भक्त हुए हैं, तो उनको भगवान अनुभव करा सकता है जिनका डायरेक्ट संबंध नहीं था, तो क्या अपने डायरेक्ट बच्चों को अनुभव नहीं करा सकते? और बाबा कहता है अगर किसी आत्मा के साथ आप दिल की लेन देन करते हो तो आत्मा का हिसाब किताब आत्मा के साथ जुड़ता है और कर्म बंधन में आ जाते हैं। अभी हमें कर्म बंधन मुक्त बनना है, कर्मातीत बनना है, तो चाहे जो भी है हमें बाबा से ही, उस समय जिस संबंध की हमें बाबा से आवश्यकता महसूस होती है उस संबंध से हम बाबा को ही याद करें, और आप महसूस करेंगे कि सचमुच बाबा ने आपको हल्का कर दिया है। भले कई बार हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि बाबा ने मुझे क्या कहा, बाबा ने मुझे क्या प्रेरणा दी, उतनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, लेकिन हल्के हो जाएंगे। और जितना सर्व संबंधों का अनुभव बाबा के साथ करेंगे, उसमें बिजी रहेंगे, अमृत वेले से रात तक माया को आने की मार्जिन नहीं है, सहज माया जीत बन जाएंगे और ईश्वरीय सुख का अनुभव करेंगे जो अतिंद्रिय सुख है, और ये महसूस करेंगे कि पाना था सो पा लिया, दिन भर में हर कर्म में भगवान मेरा साथी है, तो वो जो कर्म है वो भी बहुत हमें सहज सफलता मूर्त का अनुभव कराएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान की शक्ति उसमें जुड़ गई, तो हम कम समय में अधिक कार्य कर सकेंगे, अधिक कुशलता से कर सकेंगे, किसी ना किसी रूप में बाबा हमारा साथी हैं उस कार्य को करते हुए, और वो निमित्त भाव भी हमें याद रहेगा। हम सहज नष्टो मोहा हो जाएंगे, जो हमारा अंतिम तैयारी है। बाबा कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये गीता का 18वां अध्याय है। लगन में मगन होना, योग में जो स्थिति पावरफुल स्थिति है, या बाबा के लव में लीन होने की स्थिति भी हमें सहज अनुभव होगी। और बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि नींद के समय भी हम बाबा के साथ प्रीत की रीत निभा सकते हैं। जब हम सोने जाएं तो हमें कैसे सोना है, बाबा की याद की गोदी में सो जाना है। और जब बाबा की याद की गोदी में सो जाएंगे तो वो योग भी, वो निद्रा भी योग निद्रा हो जाएगी। वो नींद भी साधारण नींद नहीं रहेगी, वो नींद भी कमाई कराने का साधन हो जाएगी। और मम्मा बाबा जो थे, मम्मा बाबा ने अधिक कमाई जो की अपनी, सारा दिन तो मम्मा बाबा भी कारोबार में होते थे, बच्चों से मिलते थे, सब यज्ञ की जिम्मेवारी थी, लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि उनकी अधिक कमाई है नींद की कमाई की, उन्होंने हमेशा योग निद्रा की। तो नींद में भी हम बाबा के साथ हैं, और फिर जो सपने होंगे वो भी उसी तरह के होंगे, सतो प्रधान नींद होगी। तो इस तरह से सर्व संबंधों की प्रवृत्ति हम बाबा से निभाते हैं। तो जैसे वो प्रवृत्ति वाले बिजी होते हैं तो कहते हैं इतना बिजी हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है और कोई बात सोचने की, तो हमारी जीवन भी फिर ऐसी हो जाएगी कि सहज ही बाबा के साथ ही हम इतना व्यस्त हैं, इतना हमारा निरंतर योग की स्थिति, जैसे आजकल हम कहते हैं कि हम अधिक से अधिक योग करें, 8 घंटे तक हमारा चार्ट हो जाए, अभी हमें वो समय भी मिला है, तो हम ये प्रयोग करें। तो कहा कि अब हमें अब ये अवसर मिला है तो अधिक से अधिक हम बाबा को यूज करें संबंधों के रूप में, और अपने योग का चार्ट भी हम अधिक से अधिक घंटों तक बढ़ा लें, और वो हम सहज बढ़ा भी सकते हैं। ओम शांति।
बात दिल